आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय आयुक्त यानी नेशनल कमिश्नर नियुक्त किया जा रहा है। समर्थकों ने इसे युवा न्याय और कल्याण से जुड़े अंतर को कम करने के लिए स्वतंत्र जवाबदेही की दिशा में एक अहम मील का पत्थर बताया है। हालांकि सेनेटर लिडिया थॉर्प जैसे कुछ आलोचकों का कहना है कि अगर फेडरल सरकार के पास राज्यों को दंडित करने या नियमों का पालन करवाने की शक्ति नहीं होगी तो ये भूमिका वास्तविक सुरक्षा के बजाय केवल दिखावे तक ही सीमित रह सकती है। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आपके लिए अब ये रिपोर्ट विस्तार से ला रही हूँ। अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चों के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र राष्ट्रीय आयुक्त यानी नेशनल कमिश्नर की स्थापना के लिए फेडरल संसद में विधेयक पेश किया गया है। ये कदम सरकार की पिछले जून की घोषणा को लागू करता है और सू एन हंटर की इस पूर्णकालिक पद पर पहले ही नियुक्ति को औपचारिक रूप देता है। इस पद की तात्कालिक आवश्यकता न्याय और कल्याण प्रणालियों में मौजूद गंभीर असमानता से स्पष्ट होती है। वर्तमान में प्रथम राष्ट्र बच्चे अपने गैर स्वदेशी साथियों की तुलना में युवा हिरासत में जाने की 27 गुना अधिक संभावना रखते हैं और घर से बाहर देखभाल में रहने की 10 गुना अधिक संभावना रखते हैं। संसद में विधेयक पेश करते हुए सामाजिक सेवाओं की मंत्री तान्या प्लिबसेक ने कहा कि ये ढांचा 2019 में 70 वकालत करने वाले समूहों द्वारा सामने रखे गए निष्कर्षों के जवाब में तैयार किया गया है।
They described the levels of discrimination and disadvantage being faced by Aboriginal and Torres Strait Islander children at the time as, and I quote, widespread, systemic and intergenerational. Sadly, these sobering assessments have continued, but so too has the tireless advocacy to change them.
Closing the Gap की नवीनतम रिपोर्ट जल्द ही जारी होने वाली है। इस बीच स्वदेशी मामलों की मंत्री मिलांडरिनी मैकार्थी ने एडजंक्ट प्रोफेसर सू एन हंटर को इस नियुक्ति पर बधाई दी है। सेनेटर मैकार्थी का कहना है कि हंटर प्रथम राष्ट्र बच्चों के लिए एक मजबूत और मुखर पैरोकार साबित होंगी। उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसके तहत घर से बाहर देखभाल और युवा हिरासत में प्रथम राष्ट्र बच्चों की अत्यधिक संख्या को कम करने का लक्ष्य जारी है। आयुक्त सू एन हंटर ने ABC से कहा कि उनकी भूमिका का मुख्य उद्देश्य सरकार को जवाबदेह ठहराना है।
So part of my role will be to go out and talk to kids and get their voices. We can bring those back, we can do inquiries, make recommendations to Parliament around the systems from the voices of the children. What's really exciting is that bringing those young voices in to Parliament to hear about the systemic injustices that are happening and what they need and want to see changed.
वे आगे कहती हैं कि ये भूमिका उन्हें सरकार पर पहले से कहीं अधिक दबाव डालने की अनुमति देती है।
I think that's significant that we don't have that outside noise. We're able to go forward and make our own agenda, make those recommendations to Parliament. We can push further than we've ever done before. This is going to be a fully independent commission that can look into systemic injustices wherever we see fit. Look, I think there's a lot of things we can check, particularly if we look at youth incarceration and child removal. We can always look at those numbers. That will take a long term because it's been in place for a while. So over the 5 years, we hope to make a dent, particularly in those areas. I think one of the biggest things we want to see, not that Aboriginal and Torres Strait Islander kids aren't thriving, but we want to see more kids thriving.
हालांकि प्रस्तावित विधेयक आयुक्त को जानकारी उपलब्ध न कराने पर सिविल दंड का प्रावधान करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें सरकारी संस्थाओं को छूट दी गई है। नॉर्दर्न टेरिटरी जैसे क्षेत्रों में जहां इंडिजिनस बच्चों को असमान रूप से अधिक दर पर जेल भेजा जाता है और परिवारों से अलग किया जाता है, सीनेटर लिडिया थॉर्प का कहना है कि एक बड़ा कानूनी लूप होल है। सीनेटर थॉर्प सवाल उठाती है कि अगर राज्य अपने ही आयुक्त की सलाह को नजरअंदाज करते हैं तो वे फेडरल आयुक्त की क्यों सुनेंगे। उदाहरण के तौर पर हाल ही में नॉर्दर्न टेरिटरी ने अपने स्थानीय चिल्ड्रंस कमिश्नर की सलाह को खारिज कर दिया। यह उस समय हुआ जब क्षेत्र में 10 साल तक के बच्चों पर स्पिट हुड्स के इस्तेमाल को मंजूरी दी जा रही थी। चूंकि राज्यों और टेरिटरीज के पास अपने अपने आपराधिक कानूनों और नीतियों पर अधिकार क्षेत्र होते हैं, सेनेटर थॉर्प ने चेतावनी दी है कि ये नई भूमिका बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा सरकारों के बीच संबंधों को वरीयता दे सकती है। उनका कहना है कि इससे ये पद वास्तविक सुरक्षा के बजाय केवल दिखावे तक सीमित हो सकता है।
Well, if you have a national commissioner for anything, they need to have power. They need to be taken seriously. To restrict the powers of a commissioner is problematic because you're not going to get to the core of the issue. To not hold states and territories and governments accountable in this process will mean nothing at the end of the day. We know, as I said, in the Northern Territory, 10-year-old children are being locked up and tortured. If we can't have power over the Northern Territory government to stop this ongoing assault on Aboriginal children through a national children's commissioner, then what's the point of it?
सेनेटर थॉर्प का कहना है कि फेडरल सरकार को राज्यों और टेरिटरीज, खासकर नॉर्दर्न टेरिटरी सरकार पर दंडात्मक कार्यवाही का साहस दिखाना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा करने का एक तरीका उनकी फंडिंग में कटौती करना हो सकता है। उनका कहना है कि हालांकि मंत्री मैकार्थी ने राज्यों को नियमों के अनुरूप लाने पर विचार करने का वादा किया था, लेकिन हाल ही में $230 मिलियन नॉर्दर्न टेरिटरी पुलिस को दिए गए, ना कि समुदाय नेतृत्व वाले समाधानों के लिए। सेनेटर थॉर्प का कहना है कि वास्तविक बदलाव देखने के लिए समुदायों को इंडिजिनस मामलों के मंत्री पर लगातार दबाव बनाए रखना होगा, ताकि सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस परिणाम हासिल किए जा सके।
So, this commissioner needs to have power. We can't continue to have these very well-paid commissioners to just be a ticker box that writes a report and a number of recommendations that goes nowhere. And I only spoke to an elder yesterday who reeled off the number of reports and recommendations in her 50 years of working in youth justice and child protection. And she said, we are sick of it. Our people are dying. And I echo her sentiments because that commissioner's role needs to have teeth.
वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार रिकॉर्ड की हालिया समीक्षा में आपराधिक जिम्मेदारी की कम आयु और बढ़ती कैद दरों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई। मानवाधिकार परिषद की यह समीक्षा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा हर 5 साल में की जाती है और अल्बनीजी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहली समीक्षा है। 120 से अधिक देशों ने 350 से ज्यादा सिफारिशें दी हैं। ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार रिकॉर्ड का बार बार उल्लेख किया गया, खास तौर पर इस बात को लेकर कि मानवाधिकार उल्लंघन का असर इंडिजिनस समुदायों पर असमान रूप से अधिक पड़ता है। ह्यूमन राइट्स लॉ सेंटर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी केटलिन रीगर ने 7 AM पॉडकास्ट को बताया कि फेडरल सरकार के पास आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप करने का एक अधिकार है, लेकिन अब तक उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया।
Probably the other piece that has to underpin all of this, and that is one of our clearest failings and gaps, is that we don't have clear legal human rights protections in Australia. We don't have a federal human rights act, and that was repeatedly called out by a number of countries.
SBS News से ब्रियाना चार्ल्स की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया विशाली जैन ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi par jaye.